ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। स्थानीय तहों को सबल बनाकर नागरिकों को सुशासन और विकास की अनुभूति दिलाने के विषय को सरकार ने प्राथमिकता में रखा है, प्रधानमंत्री देववा का कथन। निर्वाचन आयोग ने समानुपाती के लिए सूचीकृत सांसदों की नामावली को समावेशिता के तहत सुधार कर कल तक भेजने के लिए दलों को किया पत्राचार। और दक्षिण अफ्रीकी देश जाविया की राजधानी लुसाका में मिले 27 लोगों के शव, इथियोपिया के प्रवासियों के शव होने का किया जा रहा है अनुमान। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने समानुपातिक सूची में शामिल सांसदों की नामावली को समावेशिता के तहत सुधार कर कल शाम 4 बजे तक भेजने के लिए दलों को पत्राचार किया है। बता दें कि आयोग ने प्रतिनिधि सभा सदस्य पदों के लिए समानुपातिक अंतर्गत नाम सिफारिश करने के लिए मार्गशीर्ष 24 गते शाम 4 बजे तक का समय दिया था, जिसमें दलों ने समानुपातिक उम्मीदवारों के नाम भेजे थे। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के प्रवक्ता गुरु प्रसाद वागले के मुताबिक नामावली सुधार कर आने के बाद आयोग निर्वाचित होने की घोषणा करेगा। आयोग के मुताबिक इससे पूर्व भेजे गए नामों में कई दलों की ओर से समावेशी समूह से उपयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था, तो कई दलों ने सीट संख्या से अधिक नाम भेजे थे, इसलिए सूची में संशोधन के लिए 2 दिनों का समय दिया गया है। इसी बीच आयोग ने ये जानकारी भी साझा की है कि बीते आश्विन 12 गति से जारी निर्वाचन आचार संहिता कल से लागू नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा ने कहा कि स्थानीय स्तर पर नए जनप्रतिनिधियों के कार्यभार संभालने से देश में लोकतांत्रिक अभ्यास को और मजबूती मिली है। आज गांवपालिका राष्ट्रीय महासंघ के 3रे सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री देववा ने कहा कि अगली प्राथमिकता स्थानीय सरकार को मजबूत करने की होनी चाहिए, जो कि संघीयता और लोकतंत्र की आधारशिला है, जिससे नागरिकों को सुशासन और विकास का अनुभव होगा। उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय तह संरचनात्मक सुधार, मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, सेवा प्रणाली में नई तकनीक का उपयोग, संपत्ति और दायित्वों के बीच संतुलन, ग्राहक केंद्रित योजना, विकेंद्रीकरण, प्रशिक्षण और अनुसंधान और सुधार के तरीकों को अपनाकर आगे बढ़ते हैं, तो सुशासन को संस्थागत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि सेवा प्रवाह से संबंधित कानून, प्रक्रियाएं और मानक बनाए और जारी किए जाते हैं और नागरिक वड़ापत्र लागू किया जाता है, यदि सेवा प्राप्तकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच एक सहज संबंध विकसित होता है, तो इन सब से संस्थागत सुशासन के लिए ठोस योगदान मिलेगा। उन्होंने कहा कि विशाल प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, उपयोग और संवर्धन, इल्म पर आधारित शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण जैसे मामलों में स्थानीय सरकार की भूमिका बढ़ाकर देश में व्याप्त गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त किया जाना जरूरी है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि नेपाल की राष्ट्रीय राजनीति की चाबी माओवादियों के पास है। प्रेस सेंटर नेपाल द्वारा आज ललितपुर में आयोजित केंद्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष दाहाल ने कहा कि देश को सही दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी माओवादी की है। इस बात का जिक्र करते हुए कि माओवादियों को खत्म करने के पीछे बड़ी ताकतें जुटी हैं, अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि इसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का सही विश्लेषण करने, बहु ध्रुवीय विश्व की घटनाओं, वर्तमान जनमत को समझने और देश को एक नई दिशा में ले जाने में प्रेस सेंटर को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। महिला बाल बालिका एवं ज्येष्ठ नागरिक मंत्री उमा रेग्मी ने कहा कि लैंगिक हिंसा के खिलाफ कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। नेपाल प्रेस यूनियन केंद्रीय महिला विभाग द्वारा आज काठमांडू में आयोजित महिला हिंसा के खिलाफ 16 दिवसीय अभियान अंतर्गत के कार्यक्रम में मंत्री रेग्मी ने कहा कि किसी न किसी तरीके से हर एक घर में महिला के ऊपर हिंसा होती है। महिला हिंसा के खिलाफ कई कानूनों का जिक्र करते हुए मंत्री रेग्मी ने इस बात पर जोर दिया कि कानून बनाने में सरकार की कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत किया जाना चाहिए। मंत्री रेग्मी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा केवल महिलाओं के खिलाफ हिंसा नहीं है, बल्कि इसे परिवार, समाज, राजनीतिक दलों और देश के खिलाफ हिंसा के रूप में समझा जाना चाहिए। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कमला पराजुली ने बताया कि एक ही कार्यालय से यौन हिंसा की शिकायतें बार बार आती हैं। आज काठमांडू में आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष पराजुली ने कहा कि कार्यस्थल पर हाल के दिनों में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा बढ़ी है। कार्यक्रम में काठमांडू के प्रमुख जिला अधिकारी श्याम भूसाल अधिकारी ने कहा कि कार्यस्थल पर यौन हिंसा के प्रति सभी कर्मचारियों को जागरूक करना होगा। कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने कहा कि कार्यालय में यौन हिंसा को खत्म कम करने के लिए प्रत्येक कार्यालय के प्रमुख को सतर्क किया जाना चाहिए। श्रम रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने एक बार फिर श्रमिकों के साथ श्रम मंत्री कार्यक्रम का संचालन किया है। हाल ही में संपन्न हुए प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा सदस्य चुनाव के कारण स्थगित कार्यक्रम को आज फिर से शुरू किया गया है। मंत्रालय के कॉल सेंटर के माध्यम से मजदूरों ने सीधे श्रम मंत्री शेर बहादुर कुंवर को अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव सौंपे हैं। आज के कार्यक्रम में 10 से अधिक श्रमिकों ने वैदेशिक रोजगार में ठगे जाने की शिकायत की। मजदूरों ने मंत्री कुंवर से शिकायत की है कि उन्हें छाते के अनुसार विदेश में वेतन की सुविधा नहीं मिल रही है और उनसे विदेश भेजने के लिए 7,50,000 तक रुपए लिए गए हैं। श्रमिकों की शिकायतों और समस्याओं को सुनने के बाद मंत्री कुंवर ने कहा कि रोजगार के लिए विदेश जाने से पहले वे जिस देश में जा रहे हैं वहां क्या काम करेंगे, उन्हें क्या सेवा सुविधाएं मिलेंगी, इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने किसी को पैसा दिया है या नहीं, इन सभी की जानकारी प्राप्त कर इसका प्रमाण रखना चाहिए। उन्होंने तुरंत समस्याओं के समाधान के लिए वैदेशिक रोजगार विभाग और बोर्ड को निर्देश दिए। जंगली हाथी के आक्रमण से झापा में 4 लोग घायल हो गए। जिला प्रहरी कार्यालय झापा के अनुसार घायलों का भद्रपुर स्थित मीची अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि बीती रात सप्तरी के कंचन रूप में जंगली हाथी ने 3 परिवारों के 5 घरों को तहस नहस कर दिया, जिससे 4,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। हाथी के गांव में घुसने के बाद गांव के लोग पूरी रात दहशत में जागते रहे। इस इलाके में हाथी हर साल आतंक मचाते हैं और लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। गांव के लोगों ने यह कहते हुए आक्रोश व्यक्त किया है कि संबंधित निकाय हाथियों के खतरे को कम करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने श्रीलंका के लिए नेपाली राजदूत वासुदेव मिश्र को, मालदीव के गैर आवासीय राजदूत और ऑस्ट्रेलिया के राजदूत कैलाश राज पोखरेल को न्यूजीलैंड के गैर आवासीय राजदूत की जिम्मेदारी सौंपी है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान के जरिए साझा की है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण अफ्रीकी देश जाविया की राजधानी लुसाका के पास सड़क किनारे 27 लोगों के शव मिले हैं। माना जा रहा है कि मारे गए लोग इथियोपिया के प्रवासी थे। ये शव स्थानीय लोगों को रविवार सुबह 6 बजे के करीब मिले। जाविया की पुलिस के मुताबिक मौके पर एक व्यक्ति की सांसें चल रही थी, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस का कहना है कि सभी 28 लोग पुरुष और उनकी उम्र 20 से 38 साल के बीच है। माना जा रहा है कि अन्य लोगों ने यात्रा के दौरान दम तोड़ा है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि इन लोगों को अज्ञात लोग सड़क किनारे फेंक गए हैं। जाबिया उत्तर अफ्रीकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका की तरफ जाने वाले प्रवासियों के रास्ते में पड़ता है। इस साल अक्टूबर में पड़ोसी मलावी में पुलिस को एक कब्र से 25 शव मिले थे। ये भी इथियोपिया के प्रवासी थे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंतिम इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। स्थानीय तहों को सबल बनाकर नागरिकों को सुशासन और विकास की अनुभूति दिलाने के विषय को सरकार ने प्राथमिकता में रखा है, प्रधानमंत्री देउवा का कथन। निर्वाचन आयोग ने समानुपाती के लिए सूचीकृत सांसदों की नामावली को समावेशिता के तहत सुधार कर कल तक भेजने के लिए दलों को किया पत्राचार। और दक्षिण अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी लुसाका में मिले 27 लोगों के शव इथियोपिया के प्रवासियों के शव होने का किया जा रहा है अनुमान। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।